ओम शांति। आज 24 नवंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। अंदर झूठ है, ऊपर से आप सच के तीर चला रहे हो, वो असर नहीं करेंगे,
तीर नहीं लगेगा।
तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, सच्चे बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो, इसलिए सच्चे बनो। प्रश्न, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है, सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी, क्योंकि यदि हमने झूठ बोल दिया तो हमने अपने आप को छुपा लिया, अपनी बीमारी को छुपा लिया। बीमारी हम डॉक्टर को बताएंगे नहीं तो इलाज हो गई। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी, क्यों? लेंगे तो देनी पड़ेगी। अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी,
नहीं
सेवा लो नहीं ना, देना तो पड़ेगा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है।
ले लिए नहीं देंगे तो
देना पड़ेगा, उसमें कोई इलाज नहीं है उसका, कोई दुनिया की ताकत उसे बदल नहीं सकती। परमात्मा खुद भी चाहे कि चल इसने, चलो कोई बात नहीं, ले ली तो ले ली, हम कह देते हैं कोई बात नहीं, बड़ी बहन है, बड़ा बेटा है, हाँ छोटा भाई है तेरा, नहीं यहाँ कोई छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं, सब आत्माएं बराबर है, अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं है। आत्मा मीन्स आत्मा, सब भी आत्माएं बराबर है, आज ले लिया कल देना होगा, यहाँ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं,
कोई छूट नहीं।
तो हम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा, तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही ये है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते, ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। गीत, किसने ये सब खेल रचाया, फिर जाके छुप कर बैठ गया, कहाँ है वो, ढूंढ के लाओ उसको, किसने बनाया ये खेल, पूछे तो सही, किसी कोर्ट में मुकदमा डाले तो सही। हाँ
ये खेल तो था, है और रहेगा,
ये खेल था है और रहेगा, सभी आत्माओं ने मिलकर रचा है, किसी भी आत्मा पर दोष नहीं दे सकते, परमात्मा को भी दोष नहीं दे सकते। वंडरफुल बात है कि सभी आत्माएं उतनी ही जिम्मेवार हैं जितना जिम्मेवार परमपिता परम आत्मा, कोई अंतर नहीं है। हर आत्मा, चाहे वो छोटा से छोटा पार्ट बजा रही है, चाहे बड़ा से बड़ा पार्ट बजा रही है, परंतु परमात्मा का पार्ट हम सारे संसार की आत्माओं से यूनिक है, कि वो सारे संसार की आत्माओं को आकर चढ़ती कला करता है, बाकी सारी आत्माएं देह में आने के कारण दिन प्रतिदिन गिरती जाती है। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अभी क्या तरीके आज? आज 24 हो गई ना, तो कहने का मतलब ये है कि 26 तारीख से हरियाणा में गीता सप्ताह मनाया जा रहा है। उसके लिए वो गीता पर क्वेश्चंस पूछेंगे और जो इनाम जो अच्छे सही जवाब देंगे तो उनको 1,000 रुपया रोजाना, 10,000 रुपया रोजाना, एक बार कितने जनों को, 10 जनों को देना है उन्होंने प्राइज, तो ऐसे कुछ प्राइज रखे हैं थे नहीं, सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं नहीं जाना, घर बैठे मोबाइल में अपने क्वेश्चन आंसर देने, हाँ भाई सारे कमा लेंगे। मतलब कहने का है कि उनका जवाब उनके हिसाब से मिलेगा, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो पंडित है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी है, सभी उसमें भाग लेंगे। मेन मतलब उनका ये है कि इस प्रकार से सबको गीता के बारे में जानकारी मिले।
ये किसने रखा है?
ये अपना हरियाणा सरकार ने ही रखा, मतलब गीता जयंती पर, ठीक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र हमारे हरियाणा के अंदर है, तो पूरे इंडिया से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और हाँ, उस झूठी गीता के आधार पर जवाब देना है, अपने सच्ची गीता वाला ज्ञान नहीं सुनाना है। हाँ, तो ये न्यूज में आया हुआ है, अपना जो पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकते हैं। अब गीता का जन्म किसने दिया, ये है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना, उनको जब कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता जयंती, तो जरूर उनका जन्म देने वाला भी चाहिए। ये गीता को जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता है नहीं, गीता पीछे ही आती है, तो श्री कृष्ण जयंती के बाद ही गीता जयंती मनाई जाती है। कुछ बड़ा तो हो जाए ना, अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी गई, अब उसके बाद अब गीता जयंती आई है कि इतने महीने बड़ा, कितना डेढ़ दो महीने का बड़ा हो गया होगा जब जयंती होती है, ढाई महीने का, ठीक है, लगभग जो भी मतलब, तो गीता पीछे ही पीछे हो जाती है। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए, अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण फिर पीछे गीता आनी चाहिए, पर तो श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वे गीता सुना ना सके। ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन, ये है गुहे बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वो तो सतयुग का प्रिंस है, उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा राज योग सीखकर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन, परम पिता, परम आत्मा शिव या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते, ना उसको त्रिलोकी नाथ कह सकते हैं और ना उसको त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे, बस। कोई भी देहधारी त्रिलोकी नाथ और त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते। त्रिलोकी नाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाले वाला त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव है। त्रिलोकी नाथ और त्रिकालदर्शी ये सिर्फ कौन है? परम पिता परमात्मा शिव है। ये महिमा उनकी है क्योंकि वही जानने वाला है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूरक, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। उनकी भेंट किसके साथ की जाती है? किस चीज की भेंट चंद्रमा से की जाती है? 16 कला की। और दुनिया वाले भाई बहने भी, अपने बीके भाई बहने भी कह देते हैं 16 कला, नृत्य कला, संगीत कला, साहित्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, नृत्य कला, सारी कलाएं गिन देते हैं, 16 ढूंढ कर ला देते हैं कि ये 16 कलाएं जो है ना श्री कृष्ण के अंदर थी। बाबा कहते भेंट की जाती है चंद्रमा के साथ। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे। चंद्रमा से भेंट करने का मतलब क्या है? अमावस से 16वें दिन पूर्णमासी आती है तो चंद्रमा एकदम फुल होता है, फुल मून। तो इसलिए 16 कला संपूर्ण कृष्ण को कहा जाता है। और उसकी चंद्रमा से तुलना क्यों की? क्योंकि बाकी जो सूरज है उसकी कोई कमी नहीं आती, 12 महीने सूरज पूरा पूरा ही रहेगा, ग्रहण अलग बात है, ठीक है नहीं, परंतु चंद्रमा रोजाना एक एक कला घटती जाएगी, फिर एक एक कला बढ़ती जाएगी। पूर्णमासी को पूरा है, अमावस 16वें दिन एकदम
एक कला कम हो जाएगी,
नहीं एक एक कला रोज कम होते रहते, जीरो हो जाएगी, और उसके बाद अमावस्या के बाद एक एक कला बढ़ता जाएगा। चंद्रमा से परमात्मा की तुलना चंद्रमा के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा के जो गुण है, परमात्मा की जो विशेषताएं हैं, वो कम या ज्यादा नहीं होती है, एवर कंप्लीट, सदा सदा के लिए संपूर्ण रहता है, सागर रहता है। उनका कर्तव्य ही अलग है, वो है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। शिव बाबा क्या है? गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राज योग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है, आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब ये समझानी देने वाला बड़े देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते, बच्चियां भी तो सब नंबर वार हैं। टॉपिक भी ऐसे रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया? श्रीमद् भगवत गीता का जन्मदाता कौन, किसने दिया? इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है, मतलब जैसे कृष्ण ने दिया कि शिव बाबा ने दिया, दोनों में कंट्रास्ट, दोनों में अंतर बताना है, ये है या ये है, आप फैसला करो। हाँ, कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, इसको पहले समझाओ कि भगवान श्री कृष्ण है या शिव बाबा, ठीक है। परम पिता परमात्मा शिव, और तो कोई है नहीं, इसको समझाओ उनको, क्या अंतर है, क्यों कृष्ण भगवान नहीं है? क्यों नहीं है कृष्ण भगवान? क्योंकि कृष्ण को सभी परमात्मा नहीं मानेंगे, शिव को सब परमात्मा मानते हैं, सारे संसार के धर्म। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था, सहज राज योग से ये पद कैसे पाया, ये समझानी देनी पड़े।
भाई एक बात है, जब श्री कृष्ण और इसकी शिव बाबा की तुलना होगी तो उसमें मेरे जैसे जो है अनसमझ समझो या कुछ भी समझो, वो क्वेश्चन करेंगे क्या कि शिव बाबा की शक्ति बड़ी है, भस्मासुर की शक्ति बड़ी है जो कि उसने हाथ रखने के पीछे दौड़ता रहा भागता रहा।
देखिए वो जिसके पीछे भाग रहा था भस्मासुर वो शंकर है, शिव नहीं।
वो तो शिव का ही आता है, इसे पार्ट में तो दिखाते
हैं भाई, वो शंकर और शिव में अंतर नहीं जानते। अब जो नहीं जानता तो उसे बताना होगा, ये मूर्ख लोगों ने कहानी लिख दी है कि वो शंकर के पीछे भागा। परमात्मा ना तो किसी को ऐसा कोई वरदान देते और ना किसी को श्राप देते। परमात्मा तो वरदान और श्राप देने से अलग है, वो किसी को ना वरदान देता है और ना ही श्राप देता है।
तो वरदान हर मुरली में क्यों आता है?
जो हर मुरली में वरदान आता है, यदि आप उसको ध्यान से देखें और उसके लिए वरदान देने के साथ वरदान कैसे मिलेगा उसके लिए भी लिखा जाता है। पहले एक वरदान एक लाइन की, फिर एक पैराग्राफ दिया जाता है, ये वरदान तुम्हें मिलेगा कब। दुनिया वाले तो कह देते हैं पुत्रवान भाव, पुत्रवती भाव, परंतु क्या होता है कि जब तक वो कुछ करेंगे नहीं, कुछ भी मतलब जब तक वो मेहनत करेंगे नहीं, पुत्र अपने आप आने वाला नहीं है। दूधो फलो, दूध भैंस पालोगे गाय पालोगे तब दूध मिलेगा। हाँ जी, हाँ, तुम्हारा ऐसे नहीं हो जाएगा कि आप घर बैठे रहे और आपके घर में वरदान दे दिया दादाजी ने आज हमें, बस अब हमारे घर दूध और घी की नदियां बहेंगी। नहीं बहेंगी, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ,
एक लाख भैंस आएगी
जो भी आएगा, जितने की भी गाय लाओ भैंस लाओ, उसको रोजाना नहलाओ धुलाओ, क्या कर कुछ भी ले आओ। समझानी देनी पड़े, ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है, श्री कृष्ण को नहीं मिलता। त्रिलोक की अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है, तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है।
भाई जिस दिन का प्रोग्राम हो याद दिलाना, हम भी चलेंगे।
कहाँ? कहीं घर 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 बैठे करना है भाई जी।
समझेंगे क्या, बिल्कुल प्रसन्न करेंगे।
ये घर बैठे मोबाइल में ही,
मोबाइल के द्वारा प्रश्नांतर होंगे।
हाँ, आपके पास रोजाना 5-6-10 क्वेश्चन भेज देंगे और उनका उसी दिन जवाब दे देना। 24 घंटे का टाइम है, हैं जी, 24 घंटे का टाइम है। किताब
जवाब तो नहीं दे सकते, हम तो सुन सकते थे, ये सही है, ये बात है। कौन क्या दे रहा है, जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, ये शिव की तरफ से बोल रहा है, ये कृष्ण की तरफ से बोल रहा है,
कोई बात नहीं।
जज आप बैठे हैं,
कोई बात
लेंगे बाद में, कौन
नहीं, ऐसे नहीं है। मतलब मोबाइल से, मोबाइल से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपने मोबाइल से उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
तो सब्सक्रिप्शन तो होगा ना, उनको बताएंगे ना,
वो कुछ नहीं बताएंगे,
जब इनाम देंगे तो कुछ नहीं होगा।
डेली वो वहीं बैठे जज, आपका क्वेश्चन आंसर वहां पहुंच जाएगा और वो उसका आंसर अपने आंसर से चेक करेंगे और रिजल्ट डिक्लेयर आपको, जिसका इनाम निकलेगा उसको बता देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया से है, कोई भी भाग ले सकता है। तो ये नहीं है कि भैया ना जो भी मोबाइल में मतलब उनके पास वो जा रहा है अपना जो मोबाइल से,
मोबाइल बता देता है, पूछते हैं
तो
वो तो देखिए, उनका मकसद सिर्फ ये है कि ये उत्तर ढूंढें और उसके उत्तर को समझें और इनको पता लग जाए, और उनमें से जिनका स्टीक उत्तर उनके उत्तर के साथ मिलेगा उनको इनाम दे देंगे। अब उत्तर तो पूरे जैसे 10 क्वेश्चन पूछे, अब किसके दसों के दसों एक्यूरेट होंगे तब तो उसे इनाम देंगे। अब किसके 9 ठीक है, 1 गलत हो गया, 8 ठीक है, 2 गलत हो गए, तो नहीं, उसको नहीं देंगे। अब 10 के 10 भी बहुतों के ठीक हो जाएंगे तो उनमें से फिर सिलेक्ट करेंगे कि ये फर्स्ट आए इनको, नहीं पहले पहले, फिर उनके आने के टाइम कब्रे किसने सबसे पहले जवाब दिए, जवाब तो दिए परंतु जवाब पहले भी
टाइम टेबल,
हाँ किस टाइम, क्योंकि उनके पास टाइम भी जाएगा, केस ने खोला और तुरंत उसके जवाब दे दिए। और एक व्यक्ति कितने भी जवाब दे सकता है, जितने फोन हो उतने जवाब वो दे सकता है। नहीं जीते ब्रह्म कुमार सारे फेल होंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान उनके, वो हमारी बात को मानेगी नहीं, हमारे उत्तर को तो वो नहीं।
फिर वो कैसा जैसे बना हुआ वहां पे, जो स्पीकर जो कर रहा है उनका अंतर डिफरेंट, उनको
भाई जी उन्होंने
जो जीतेगा,
भाई जी उन्होंने अपने गीता के हिसाब से जवाब लेना है, जो वहां का गीता पाठी है, गीता को जो पढ़ने वाले हैं वो डिसीजन करेंगे। ब्रह्मा कुमारीज वाले ज्ञान के हिसाब से नहीं, वो तो ये समझते नहीं, पर वो तो ब्रह्मा कुमारी इसको इस प्रकार से नहीं समझेंगे ना भाई। खैर ये बात समझ में, नहीं मेरा नंबर किसी का नंबर से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो तो उन्होंने जो डिसीजन लिया कि इसका ये जवाब जो देगा वो उनका,
क्वेश्चन का आंसर साथ में लिखा
होगा, नहीं लिखा होगा,
नहीं
तो उनके पास लिखा हुआ है,
हाँ
जैसे हम जवाब देंगे कंप्यूटर वहां पर चेक करके बता देगा इसने इतने इतने ठीक बताए बस।
मेरे खाते में
ये अक्षर याद करने हैं, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, भुलैया है देह अहंकार रूपी माया ने, भुलाया किसने है देह अहंकार रूपी माया ने, तो गीता का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण, परम पिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकी नाथ है, परमात्मा ही एक है जो त्रिकालदर्शी भी है और तीनों लोकों का नाथ भी है, और उनके बच्चे होने के कारण हम भी त्रिलोकी नाथ और त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, क्योंकि परमात्मा हमें भी बता देते हैं। अब कौन कितना नंबर वार ध्यान से समझता है उसी हिसाब से बनेगा, परंतु जब हम ब्राह्मण से देवता के रूप में जन्म ले लेते हैं फिर हमें कुछ पता नहीं होता कि परमात्मा ने हमें क्या समझाया था, फिर कोई भी नहीं रहता। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं, ना श्री कृष्ण में नॉलेज है ना ये लक्ष्मी नारायण में नॉलेज है। हाँ जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वे विश्व के मालिक बन गए, जब सदगति मिल गई फिर ये नॉलेज बुद्धि से, ये नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है, गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वो एक ही है, वे पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है, वो पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं, ये समझानी देनी पड़ती है, ये समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, सब तो 84 जन्म नहीं लेते, जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहे, जिसने दुनिया वाली गीता लिखी है उसको त्रिकालदर्शी
नहीं कहेंगे,
व्यास को भी त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को भी त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, फिर वो सच कैसे होगा। इसलिए सच तो केवल और केवल परम पिता परम आत्मा ही बता सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच ये एकदम रॉन्ग है, रॉन्ग भी होना ही है जरूर, जब सारे शास्त्र रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट सुनाए, राइट सुनाए, बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, सत्य के साथ संग, जो तुमको सत्य बनाते हैं। सत्संग कौन सा होता है? जिसका सत्य परमात्मा के साथ संग है, वो है सत्संग। और दुनिया में जितने भी हैं सारे झूठ संग। जितने 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो सारे के सारे देह में आने वाले हैं, और देह में आते ही झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगा, और उनका हमने संग किया तो क्या बन गया? वो झूठ संग। दुनिया वाले जितने भी सत्संग कहते हैं, सत्संग है सत्संग है, एक भी सत्संग। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली ये जगत अम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली ये जगत अम्बा सरस्वती, इनको बनाते हैं सच। प्रजा पिता ब्रह्मा के सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहां भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? मंदिरों में जाओ, भाषण करो। घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए। शमशान में भी, मंदिर में भी जाओ, शमशान में भी जाओ। वहां मनुष्यों को वैराग्य होता है, परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वो फट से समझेंगे। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते। शिव को बाबा कहते, जरूर मम्मा भी होगी। वे है गुप्त, वे है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है, उनको मात पिता कैसे कहते? ये गुप्त बात कोई भी जानना। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजा पिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वे तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा? वे तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, आधा कल्प चलता है। ये है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते। तब मैं बाप आता हूं। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े, उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं, उनको क्रॉस पर चढ़ाया, क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो ना सके, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा पवित्र है। उसने क्या पाप किया जो उसको क्रॉस पर, सूली पर लटकाया जाए? नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वे तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वे सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मैसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा न सके। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। यह किसने कहा? शिव भगवान वाच। ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। समझो, प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया। बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ, क्योंकि वो शरीर तो किसी और का था। क्राइस्ट की आत्मा तो उसमें प्रवेश करके, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके पढ़ाते, ऐसे क्राइस्ट की आत्मा भी उस मरियम के बेटे के शरीर में प्रवेश करके समझाती थी। तो ऐसी बातें सुनकर वंद्र खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। ये भी ड्रामा, ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वे लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे ना सके। बरोबर, गालियां अब भी ही मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। टीचर तो बाबा है, टीचर तो बाबा है, पवित्र आत्मा है, और ये है अपवित्र। जो प्योर बन रहा है, जो समझ गए हैं, वो बित नहीं करेंगे। ये बित क्या होता है? नहीं, हाँ जी, बित करना समझ में नहीं आ रहा, मैं इसका क्या जवाब दूं? उसको कहते हैं बित करना। भाई कोई प्रश्न पूछ ले, वे कुछ बताएगा, एक्यूरेट जवाब नहीं दे रहा है, इसको कहते हैं बित करना। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया और वो उसका जवाब देने के बजाय कभी कुछ बोल देता है, एक्यूरेट जवाब नहीं देता है, तो उसको कहा जाता है बित करना। जिनको ज्ञान समझ में आ गया वो सीधा जवाब देंगे ना, जिनको ज्ञान समझ में नहीं आया वो बित करेंगे। नहीं तो समझेंगे कि ये तो सिखाया हुआ है, फिर वे बात कोई की को जचती नहीं। मतलब किसी ने कोई बात बता दी, उसको क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, अब उसको समझा नहीं पाया, तो इसका मतलब इसने रट रखा है कि इसका ये जवाब देना है, तो बित करना हो गया ना। समझा क्यों नहीं पा रहा? फिर समझ में आए ना। उसके बाद जैसे आपने कहा कि शंकर को शिव के पीछे वो भस्मासुर भागा, वो डरता फिरता था, तो भस्मासुर क्या है, शिव क्या है, शंकर क्या है, ये जिसको पता होगा वो तो सीधा तुरंत जवाब दे देगा, नहीं तो बित करेगा। फिर वे बात कोई को जचती नहीं। तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वो औरों को कहे काम महाशत्रु है तो तीर लग नहीं सकता। खुद विकार में जाता और दूसरों को कह के विकार में नहीं जाओ। जैसे पंडित का मिसाल है, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे, वे अभी की ही बात है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? ये पंडित नहीं जानते। वैशाल्य से शिवालय में चले जाएंगे, ये दुनिया है वैशाल्य, और हम कहां जाएंगे? शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्री मत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। यहां तो सिर्फ समझानी दी जाती है तो भी कई मुर्दे बन जाते। कई क्या बन जाते हैं? मुर्दे। क्या मतलब है मुर्दे बनने का? यहाँ देह अभिमानी बन जाते। बाकी सब करेंगे परंतु देह अभिमान में करेंगे। बच्चों को तो लिखना पड़ता है, पढ़ना चाहे पड़ता है, बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात ऊंचते ऊंच मर्तबा दिलाते हैं, ऊंचते ऊंच मर्तबा दिलाते हैं, यही प्यार है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि ये देवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। सेवा से पता लग जाएगा। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो हम जाकर दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्री मत पर ना चले सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा, खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहां महारानी बनना देह अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा ये भूल हुई। अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं है, इम्तिहान में जब नापास होते हैं तो शर्माते भी हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते गायन भी करते, अभी यह ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में और फिर 42 जन्म कलयुग में होते हैं। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो एडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों की का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है, एक बाप के संग में रहना है। वरदान निमित आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भाव। निमित आत्माओं के डायरेक्शन जिनको यज्ञ में निमित बनाया गया है उनके डायरेक्शन को पर चलना है तो पापों से मुक्त होने वाले समझदार बनो। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। निमित बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए, मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्या कहा है बाबा ने, मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका कसूर नहीं है, तो आपका पाप नहीं बनेगा क्योंकि जिसने उन्हें निमित्त बनाया है वे बाप पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। स्लोगन ऑनेस्ट वे हैं जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, मनुष्य का 84 जन्म है ना कि 84 लाख योनियां। अब ये जो कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों सचमुच जहां सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहती। जहां सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। परमधाम को दुनिया नहीं कहेंगे। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहां सर्वदा सुख शांति का जीवन था, उसी देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं कि देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते ही नहीं थे, उन्होंने जन्म लिया है तो उन्होंने मरना है ही है। अब ये कहना उनका रोंग है क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चरती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63। क्यों कहा? हालांकि उन 21 जन्मों में भी गिरती कला हुई भाई, पहले वो 100% थे तो 99 पर आए ना, पतित तो हुए ना, तो वो भी तो कला उनकी गिरी, परंतु वो 21 जन्म उनको अब की चढ़ती कला के हिसाब से मिले। अब परमात्मा की श्रीमत पर चलकर जितना उन्होंने पवित्र बनाया और उतना उनको सुख मिला। तो इस प्रकार से चढ़ती कला वाले जन्म है, और बाकी जो है द्वापर से गिरती कला वाले जन्म हो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमात्म डायरेक्शन पर चढ़ती कला में नहीं लिया, उन्होंने अपने आप को सुधारा परंतु परमात्मा के डायरेक्शन पर नहीं। वो अपने उनके जो धर्म पिता हैं वो इस ज्ञान मुरली को उन्हें सुनाएंगे, जैसा उनको समझाएंगे उतना वो बनेंगे, वो परमात्मा की श्रीमत पर नहीं बनेंगे। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। अब मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं, मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य हैं। अनेक किस्म के जैसे पैदाइश है उसमें भी मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता है और ना जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगना भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है। अगर उन्होंने ये बुद्धि नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई है, उन्होंने की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान, मनुष्य क्या है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सुवर की योनि में वलवल उतरे। परंतु उस कहने इस कहने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य कोई सुकर की योनि लेता है, परंतु सुकर का मतलब ये है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।